नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र तिवारी
और मैं अंजलि जोशी, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है जब चलें शहर की ओर।
जी हाँ, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम अपने प्रवासी भाइयों को देते हैं वो सभी जरूरी जानकारियाँ
जो उन्हें गांव से शहर आने के दौरान और शहर में आने के बाद ध्यान में रखनी चाहिए,
क्योंकि यही वो बातें हैं जो उनके प्रवास के मुश्किलों भरे सफर को आसान बना देती हैं।
और हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के द्वारा दी जाने वाली जानकारियों का आप सभी को पूरा लाभ मिल रहा होगा।
साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।
और आज कार्यक्रम की 28वीं कड़ी है।
वैसे अंजलि, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी।
क्या बात पूछनी थी नरेन?
भाई, पहली नौकरी से अनुभव प्राप्त करने के बाद जब कोई व्यक्ति दूसरी नौकरी की शुरुआत करने जाता है तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो गलतियाँ फिर से होनी चाहिए जो पहली नौकरी प्राप्त करने के दौरान अक्सर लोगों से हो जाती हैं?
बिल्कुल भी नहीं, जो अपने अनुभवों से सीखता है वही आगे बढ़ता है।
दोस्तों, अंजलि ने तो कह दिया कि अनुभव सब कुछ सिखा देता है, पर क्या हमारे धारावाहिक जब चलें शहर की ओर में चंदर अपनी गलतियों से कुछ सीख पाया है? कहीं वो दोबारा वही गलती तो नहीं करेगा जो ढाबे की नौकरी के दौरान उसने की थी? तो फिर देर किस बात की, आइए सुनते हैं धारावाहिक शहर की ओर की अगली कड़ी।
दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना उमेश चंदर को सड़क पर अकेला छोड़कर चला जाता है। चंदर को जब होश आता है तो वो खुद को जीबी रोड पर पाता है। उधर गांव में चंदर के घर पर मीरा के बेटे के जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं। घर वाले बच्चे का नाम रोशन रखते हैं। मुंबई में कविता की मुलाकात एक बार फिर माया से होती है। कविता माया को अपने गांव जाने के फैसले के बारे में बताती है, जिसमें माया कविता का समर्थन करती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
अभी तो गाना बज रहा था, ये रेडियो भी कहाँ गया? ये तू साला, कम से लगता चंदर आ गया। अरे चंदर, अरे अंदर आना, अंदर आ, बैठ। अरे बैठ ना।
हाँ।
रुक जरा, मैं रेडियो बंद करता हूँ। जब से तेरा फोन आया ना, मैं बस तेरा इंतजार कर रहा था चंदर। अरे ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है
खजेंदर, क्या बताऊं यार, मेरे साथ सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है।
अरे हौसला रख यार
खजेंदर, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया है यार, मैं बिल्कुल अपने होश में नहीं था।
लेकिन चंदर, जो कुछ भी हुआ ना वो सही नहीं हुआ यार। अच्छा, तूने ये सब करते वक्त सुरक्षा तो ली थी ना?
सुरक्षा?
अरे मेरा मतलब निरोध से है भाई।
मुझे कुछ भी याद नहीं, उमेश के साथ नशे में इतना धुत था कि बस अभी सोचता हूँ तो खुद पर हंसी आती है।
तू भी ना पागल है चंदर। अरे भाई, नौकरी गई तो क्या हुआ, दूसरी ढूंढ लेंगे। लेकिन भाई, ये पीने से, जीबी रोड जाने से तेरी समस्या का हल हो जाएगा क्या?
खजेंद्र, मुझे नहीं पता मुझसे ये सब कुछ कैसे हो गया। उधर घर पर सब पैसों का इंतजार कर रहे होंगे, मैं उन्हें कैसे बताऊं कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी नौकरी, मेरे रहने का ठिकाना।
अरे चंदर, तू परेशान मत हो यार। देख, जहाँ मैंने अब काम पकड़ा है ना, ये रेस्टोरेंट नया खुला है और यहाँ अभी लोगों की जरूरत भी है। तू एक काम कर, तू यहाँ इंटरव्यू दे दे। अरे भगवान ने चाहा तो तेरा काम भी यही हो जाएगा। और मैं तुझे कल मैनेजर से मिलवा दूंगा, ठीक है?
मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा गजेंद्र। लेकिन तू यहाँ कैसे आया?
अरे यार, तेरे जाने के बाद मेरे भी मालिक से कहा सुनी हो गई। इधर एक दोस्त ने इस रेस्टोरेंट के बारे में बताया, उधर अपनी सैलरी अपने हाथ में आ गई और मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया बस।
काश मैंने जल्दबाजी से काम ना लिया होता।
अरे छोड़ चंदर, अब वैसे भी उसे तुझ पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं था। छोड़ इन बातों को, एक काम की बात सुन, यहाँ इस रेस्टोरेंट में पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं और रहने के लिए अलग से कमरा भी। अरे मेरे साथ दो लोग और हैं, अगर तेरा काम हो गया ना तो तू भी मेरे साथ यहीं रहना।
पर बाकी लोग, मेरा मतलब है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं।
वो काम पर गए हैं और अपनी आज छुट्टी है। अच्छा तू एक काम कर, नहा धो के आराम कर, बहुत थका हुआ लग रहा है तू।
सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस और ये हो गई पूरी 20 बोतलें।
बौजी ये क्या कर रही हो?
छुटकी, हमारा जूस का पहला ऑर्डर पूरा हो गया।
सच बौजी?
हाँ।
तो अब घर में पैसे आएंगे।
वो तो है।
देख मधु, पैसे सीधे मेरे हाथ में आने चाहिए।
पर माँ, ये तो बौजी की कमाई होगी, वो अपने पैसे तुमको क्यों देगी?
तू चुप कर छुटकी, बढ़िया ही अपनी माँ को सिखाने वाली। चल जा, जाके घर के दूसरे काम देख, बांस जैसी लंबी होती जा रही है। अरे भाइयों को कोई सुध हो तो इसकी ब्याह की सोचे ना।
माँ जी, अभी तो छुटकी बच्ची है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी।
हाँ, जैसे तुझे समझ आ गई। एक बार अगर लड़की का मुंह खुल गया तो बस बंद नहीं होता। अब तू सही से हिसाब खत्म करके मुझे समझा दे, कितना दे रहे हैं जूस फूस वाले?
माँ जी वो तो नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं आपको सारे दे दूंगी।
हाँ हाँ ठीक है।
ये तेरे 20 बोतलों के 8 रुपए के हिसाब से हो गए 160 रुपए, 50 रुपए हो गए माल्टा के।
अच्छा
तो तेरे बने 110 रुपए। ये ले मधु, खुश है ना?
खुश क्यों नहीं होंगी, ये मेरी पहली कमाई है।
अच्छा तो अब तू इस कमाई का करेगी क्या?
मैं इन्हें अपनी सास को दे दूंगी।
सारे?
हाँ, उन्होंने इसी शर्त पर तो मुझे ये काम करने की इजाज़त दी है।
मेरी एक बात मानेगी मधु?
क्या?
एक काम कर, अपने नाम से हमारे स्वयं सहायता समूह में एक बचत खाता खुलवा ले, इनमें से कुछ पैसे उसमें जमा कर, बाकी के अपनी सास को दे दे।
पर दीदी,
देख इधर तेरे पास कुछ पैसे भी जुड़ जाएंगे, उधर तेरी सास भी खुश रहेगी। अरे पता नहीं कब तुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो कम से कम जरूरत के वक्त किसी से मांगने तो नहीं पड़ेंगे।
आप बात तो सही कहती हैं दीदी।
अच्छा सुन, वो जो मोटी सी चाची बैठी है ना।
कहाँ? वो वहाँ?
हाँ वो, उनका नाम रेखा दीदी है, उनसे बात कर अपने खाते के बारे में, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है, वो तुम्हारी मदद करेंगी।
जी दीदी।
भेल भेल भेल, चना जोर, 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए।
राजेश, मैंने गांव जाने के लिए छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है।
क्यों?
मैं सोच रही हूँ अगर उन्होंने मुझे घर छोड़ने के लिए माफ कर भी दिया तो कहीं हमारी शादी की बात सुनकर वो फिर से नाराज ना हो जाएं।
ओफो कविता, तुम बेकार में डर रही हो। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे मम्मी पापा हमारे रिश्ते को जरूर मंजूरी दे देंगे, और बस एक बार उनकी तरफ से इजाजत मिली नहीं, फिर तो बस मैं और तुम।
तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे हम कल ही शादी करने वाले हैं।
अरे कल ना सही, लेकिन देखना आने वाले 2 महीनों में हम शादी जरूर कर लेंगे, और वो भी तुम्हारे मम्मी पापा की मर्जी से, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम उन्हें मना लोगी।
तुम्हें इतना यकीन है मुझ पर?
खुद से ज्यादा।
लेकिन अगर मम्मी पापा फिर भी ना माने तो?
तो फिर एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ गांव चलता हूँ।
क्या?
हाँ, मैं उनके हाथ जोड़ लूंगा, उनके पैर पकड़ लूंगा और कहूंगा कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ और उसे हमेशा खुश रखूंगा, फिर तो वो मान जाएंगे ना।
राजेश तुम भी ना, तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगे, हमेशा मजाक करते हो।
सर ये मेरा दोस्त है चंदर। सर ये नौकरी के लिए आया है, अगर इसके लिए भी कोई नौकरी हो तो।
ठीक है तुम जाओ, मैं बात करता हूँ।
जी सर।
हाँ तो तुम्हारा नाम क्या है?
जी चंदर।
चंदर, अच्छा इससे पहले कहाँ काम करते थे?
वो द्वारका के पास एक ढाबे पर, वहाँ मैं खाना बनाने का काम करता था।
अच्छा ढाबे पर। अच्छा ये बताओ अगर हम तुम्हें यहाँ खाना बनाने का काम दें तो उसकी पेमेंट क्या लोगे?
जी 4,000 रुपए महीना।
4,000 रुपए? चंदर देखो ढाबे और होटल के खाने में बड़ा फर्क होता है।
जी
मैं मानता हूँ कि तुमको खाना बनाना आता होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ के हिसाब से खाना बनाना सीखना होगा, और हो सकता है उसके लिए तुम्हें यहाँ रसोई में हेल्पर के तौर पे काम करना पड़े।
जी
और जैसे ही तुम यहाँ काम सीख गए तो मैं तुम्हें कुक बना दूंगा।
ठीक है, लेकिन फिर भी कितनी तनख्वाह?
अभी तो हम तुम्हें 2,000 दे सकते हैं, पर जैसे ही तुम्हारा प्रमोशन होगा तो तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर 4,000 कर दी जाएगी। बोलो मंजूर है?
जी ठीक है।
तो ठीक है, कल तुम्हारा एग्रीमेंट बन जाएगा और उसके बाद तुम यहाँ काम शुरू कर सकते हो।
जी एग्रीमेंट?
उसमें तुम्हारी सैलरी और तुम्हारे काम के बारे में लिखा होगा।
पर क्या उसकी एक कॉपी मुझे भी मिल जाएगी?
तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा, ये तो तुम्हारा हक है। वैसे तुम्हारे मन में ये ख्याल आया क्यों?
सर जी ठोकरें इंसान को चलना सिखा देती हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, तुम चिंता मत करो, एग्रीमेंट की एक कॉपी तुम्हें भी मिल जाएगी।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर और नरेन अब हम अपने प्रवासी दोस्तों से पूछते हैं कि पहली नौकरी के बाद जब उन्होंने दूसरी नौकरी प्राप्त की तो उनका पहली नौकरी का अनुभव उनके कितने काम आया।
तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, आइए सुनते हैं इस संबंध में हमारे संवाददाताओं ने हमारे प्रवासी दोस्तों से क्या बातचीत की और इसके उन्हें क्या क्या जवाब मिले।
मेरी दूसरी नौकरी पहली नौकरी से इस तरह अलग है, जैसे कि मुझे पहली नौकरी में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, टाइमिंग की प्रॉब्लम, सैलरी की प्रॉब्लम और भी बहुत प्रॉब्लम थी। सैलरी का कुछ पता नहीं था, एक महीने में मिल रही है, दो महीने में मिल रही है, और टाइमिंग सुबह तो टाइम से जाना है लेकिन आने की कोई टाइमिंग नहीं थी, और रूल रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा थे वहाँ पर। और दूसरी नौकरी मुझे ज़्यादा मुश्किल से तो नहीं मिली, मेरे एक भाई हैं उन्हीं के रेफरेंस से मुझे ये नौकरी मिली। और जहाँ तक मेरी सैलरी का सवाल है, मेरी सैलरी मेरे काम को लेके काफ़ी ठीक है और मुझे लगता है अगर मैं ढंग से परफॉर्म करूँगी तो काफ़ी प्रोग्रेस होगी।
मेरे पहली नौकरी से दूसरी नौकरी कई तरीके से अलग है। मुझे वैसे ये अपनी दूसरी नौकरी ढूंढने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, इसके कारण मुख्य कारण ये था कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लेकिन मेरा पहली नौकरी छोड़ने का सबसे मुख्य कारण यही था कि मुझे जो दूसरी नौकरी है उसमें प्रमोशंस के चांसेस बहुत अच्छे मिले हैं, इसमें मेरा जो सैलरी पैकेज है वह भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो इस दूसरी नौकरी में मुझे मिली है वो मेरी ऑफिस का एटमॉस्फेयर है, क्योंकि हमारे ऑफिस में जो एटमॉस्फेयर है वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर से ज़्यादा कहीं फैमिली एटमॉस्फेयर है, जिसके कारण हमें काम करना हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाता है।
मेरी पहली नौकरी जो थी उसमें सैलरी प्लस टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, सैलरी ऐसे में प्रॉब्लम थी कि उसमें हम एक महीने काम करते थे तो सैलरी हमें दूसरे या तीसरे महीने मिलती थी, एंड टाइमिंग की ये प्रॉब्लम थी कि सुबह जाने का टाइम था लेकिन आने का कोई टाइम नहीं था, कभी 2:30 बजे, कभी 3-4, कभी कभी तो 5-6 भी बज जाते थे। इसलिए मुझे पहली नौकरी इतनी सही नहीं लगी। और दूसरी नौकरी में हमें अगर जल्दी छुट्टी लेनी हो तो सर हमें जल्दी छुट्टी दे देते हैं, और काम यहाँ अच्छा करेंगे तो प्रोग्रेस हमारी उतनी बढ़ेगी, ये हमारे पे डिपेंड करते हैं हम काम कितना अच्छा करते हैं।
मैंने अपने करियर की शुरुआत आफ्टर ग्रेजुएशन किया था, मुझे पहले जॉब पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं आई थी, और जब मेरी पहली जॉब लगी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि वो मेरे करियर की पहली शुरुआत थी। उसके बाद मैंने सेकंड जॉब पकड़ा जो कि अभी भी मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये महसूस किया कि जो मैं पहली जॉब कर रहा था वहाँ से इन्वायरमेंट बहुत बहुत अच्छा है, यहाँ के जो एम्प्लॉई है बहुत ही सपोर्टिंग है, और सबसे अच्छी बात मैंने ये महसूस किया कि यहाँ के जो मेरे बॉस हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनके साथ कोऑर्डिनेशन, और जो मेरा करियर पाथ जो आज मेरा बन रहा है उनकी वजह से बन रहा है।
हमारे श्रोताओं के विचार हम तक पहुंचाने के लिए हम अपने सभी सामुदायिक संवाददाताओं का धन्यवाद करते हैं।
नरेन तुमने सुना पहली नौकरी से दूसरी नौकरी के दौरान लोगों में कितना अंतर आ जाता है और वो कितने जागरूक हो जाते हैं।
सही कहा अंजलि।
वैसे नरेन जब बात जागरूकता की हो ही रही है तो क्यों ना इस बारे में भी बात हो जाए कि असुरक्षित यौन संबंध बनाना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है।
बिल्कुल, और इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे खास मेहमान जो डॉक्टर हैं।
हमारे अगले सेगमेंट कुछ विश्वास में।
नमस्कार, आज हम हैं डॉक्टर नगेंद्र जी के साथ और आज हम उनसे बात कर रहे हैं असुरक्षित यौन संबंधों के बारे में। कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार,
क्या आप हमें बताएंगे कि असुरक्षित यौन संबंध क्या होते हैं?
असुरक्षित यौन संबंध वो होते हैं जो कि अपन बिना किसी कोंडोम या ऐसे ही करते हैं, उन्हें असुरक्षित संबंध करते हैं, कोई सावधानी जिसमें नहीं बरतते उन्हें असुरक्षित संबंध कहते हैं।
असुरक्षित यौन संबंध किस किस तरह से खतरनाक हो सकते हैं?
असुरक्षित यौन संबंध तो ये नहीं कि आप एक किसी एक पार्टनर से सेक्स करने के बाद सोचें कि नहीं सुरक्षित नहीं हो सकते, नहीं, अगर वो HIV इन्फेक्टेड है तो वो भी आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। दूसरी बात, क्या इसमें कई तरह के गुप्त रोग हो सकते हैं, STD हो सकती है आपको और HIV हो सकता है, तो ये सभी तरह से खतरनाक है आपके लिए।
सामान्यतः कौन कौन से यौन रोग असुरक्षित यौन संबंध से हो सकते हैं?
सबसे पहले तो HIV हो सकता है, दूसरा गोनोरिया हो सकता है, तीसरा सिफिलिस हो सकता है, हर्पिस हो सकते हैं, ये गुप्त अंगों पर कई तरह के इरप्शंस हो सकते हैं जिसमें जो कि उनमें पस पड़ जाता है और जो हमेशा कभी ठीक नहीं होते हैं वो बार बार होते रहते हैं, ये सभी लक्षण आते हैं गुप्त रोग में।
असुरक्षित यौन संबंधों और यौन रोगों से किस तरह से बचा जा सकता है?
असुरक्षित यौन संबंध में सबसे पहले तो कोंडम का यूज करना चाहिए और अपनी जीवन साथी के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए।
जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अच्छा अंजलि एक बात बताओ।
हाँ पूछो।
भाई कॉन्डम कॉपर टी और गोलियों के अलावा भी तो गर्भ निरोध के उपाय हो सकते हैं।
मतलब?
मतलब ये कि जैसे कुछ लोग ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं करना चाहते लेकिन वो गर्भ निरोध चाहते हैं, तो कुछ तो प्राकृतिक तरीके होंगे गर्भ निरोध के।
हाँ है तो सही ऐसे उपाय भी, लेकिन उनके बारे में तुम्हें मैं नहीं भैजी ज्यादा बेहतर जानकारी दे सकते हैं।
तो ठीक है आज इसी जानकारी के लिए बुलाते हैं भैजी को।
मैं हूँ भैया भाई सब मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
अरे अंजलि नरेन कैसे याद किया आप दोनों ने मुझे?
भैजी हमने अपने कार्यक्रम के जरिए गर्भ निरोध के कई तरीकों के बारे में बातचीत की है।
बिल्कुल।
जैसे गोलियां कॉन्डम्स और कॉपर्टी आदि, और ये सभी कृत्रिम उपाय हैं।
बिल्कुल ठीक।
लेकिन भैजी इन कृत्रिम उपायों के अलावा गर्भ निरोध के कुछ प्राकृतिक उपाय भी तो हो सकते हैं ना?
हो तो सकते हैं लेकिन वो इतने विश्वसनीय नहीं होते। प्राकृतिक उपायों पर निर्भर रहने से बहुत बार गर्भ ठहरने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हाँ एक तरीका है, बिल्कुल 100% कामयाब तरीका।
क्या भैजी?
वो तरीका है अंजलि आत्म संयम का, यानी कि दंपत्ति संभोग ही ना करें। अरे इसमें हंसने की क्या बात है, जब लोग संभोग ही नहीं करेंगे तो गर्भ ठहरने का सवाल ही नहीं उठता।
लेकिन इसके अलावा क्या और कोई उपाय नहीं है जिसमें लोग संभोग भी कर सकें और गर्भ भी ना ठहरे?
तरीका तो है नरेन और काफी हद तक कारगर भी है, बशर्ते कि महिला अपने मासिक धर्म चक्र का ध्यान रखे।
वो कैसे भैजी?
देखो अंजलि महिलाओं का एक मासिक धर्म चक्र होता है, यानी कि माहवारी आने का समय। हर महीने स्त्री के अंडाशय से एक अंडा परिपक्व होता है और ये अंडा अंडाशय से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जिसमें यदि संभोग किया जाए तो स्त्री में गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। अगर उन दिनों में संभोग न किया जाए तो गर्भ ठहरने से बचा जा सकता है। उन दिनों को असुरक्षित काल कहते हैं, अंग्रेजी में अनसेफ पीरियड।
लेकिन भैजी महिलाओं को पता कैसे चलेगा कि वो दिन कौन से हैं?
इसका भी तरीका है लेकिन महिला को अपने शरीर में होने वाले बदलावों पर बारीकी से गौर करना होगा। ये बदलाव शारीरिक भी हो सकते हैं या फिर मानसिक भी, जैसे चिड़चिड़ापन या फिर गुस्से का बढ़ना, शरीर के तापमान का बढ़ जाना, योनि द्रव्य का स्राव बढ़ जाना। यदि महिला इन दिनों में अपना रोजाना तापमान ले तो उसे पता चल जाता है कि कब अंडा परिपक्व होकर गर्भाशय की ओर बढ़ रहा है। बस उन उच्च तापमान वाले दिनों में संभोग ना करें।
लेकिन भैजी क्या ये तरीका सचमुच पूरी तरह से कारगर साबित होता है?
देखो 80% तक तो कामयाबी मिल सकती है लेकिन कभी कभी महिला अपने उन दिनों की गणना अगर ठीक ढंग से नहीं कर पाती या फिर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ऐसे में तो गर्भ ठहरने की संभावना बनी रहती है। और अंजलि तुम भी इस बात को मानोगी कि हमारे देश में कई बार महिलाएं पतियों को संभोग के लिए मना ही नहीं कर पाती, ऐसे में प्राकृतिक तरीके असफल हो जाते हैं।
जी भैजी और कुछ इसके अलावा?
इसके अलावा और कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है लेकिन लोग गलतफहमी में या फिर जानकारी के अभाव में ऐसा सोचते हैं, यहाँ तक कि मानते भी हैं कि संभोग के दौरान वीर्यपात से पहले ही पुरुष अगर अपना लिंग बाहर निकाल ले और योनि के बाहर वीर्य छोड़े तो इससे गर्भ नहीं ठहरेगा।
ये तो बड़ा सरल तरीका है, तो आप इस उपाय की सिफारिश क्यों नहीं करते?
सरल तरीका तो है लेकिन ये गलत तरीका है। मैं इस तरीके की सिफारिश इसलिए नहीं करता क्योंकि वीर्यपात से पहले भी संभोग के दौरान पुरुष के लिंग से वीर्य की बूंद रिस सकती है और ऐसे में गर्भाधान हो सकता है। और हाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात।
वो क्या भैजी?
ध्यान रखें कि किसी भी प्राकृतिक गर्भ निरोध के उपाय से यौन रोग और HIV से कतई नहीं बचा जा सकता।
तो दोस्तों उम्मीद है कि भैजी की बातों पर आप जरूर गौर फरमाएंगे और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर।
बचत कौन नहीं करना चाहता भाई, मैं तो बचत करना चाहती हूँ। नरेन, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में?
बिल्कुल भाई, मैं भी पैसे बचाना चाहता हूँ।
तो चलो इसी विषय पर आज हम बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट काम की बात में। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप सब ही बचत करने में विश्वास रखते हैं। अब जब सभी बचत करना चाहते हैं तो बचत खाता होना भी जरूरी है, फिर चाहे वो बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में।
वैसे भी दोस्तों, बैंक में खाता खुलवाकर उसमें अपने धन को रखना घर पर रखने से अधिक फायदेमंद भी है और सुरक्षित भी।
फायदेमंद इसलिए क्योंकि बैंक आपके द्वारा जमा की गई राशि पर लगभग 3.5% वार्षिक की दर से ब्याज देता है।
और सुरक्षित इसलिए क्योंकि सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की देखरेख में कार्य करते हैं, जहां आपके पैसे के डूबने की कोई आशंका नहीं होती।
तो हुआ ना ये सुरक्षित भी और फायदेमंद भी।
अंजलि, अक्सर लोग सोचने लगते हैं कि बैंक में खाता खुलवाना बड़ा ही झंझट भरा काम है।
लेकिन नरेन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आप आसानी से किसी भी राष्ट्रीयकृत या फिर निजी बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। आप अपना खाता अपने नाम से या फिर पति पत्नी दोनों मिलकर संयुक्त नाम से या फिर घर के किसी अन्य सदस्य के साथ मिलकर भी खुलवा सकते हैं।
खाता खुलवाने के लिए आपको कुछ कागजी कार्रवाई जरूर करनी पड़ेगी। जैसे इसके लिए आपको प्रमाण के तौर पर अपना राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस आदि बैंक को देना पड़ता है।
अगर आप किराए पर रहते हैं तो आप अपने किराए के अनुबंध की कॉपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा आप बिजली का बिल, मोबाइल या लैंडलाइन टेलीफोन का बिल, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप शहर में नए आए हैं और आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ के रूप में कुछ भी नहीं है, तो आप जहां काम करते हैं उस कंपनी से अनुमति लेकर उसके लेटर हेड पर अपना पता लिखवा कर उसे प्रमाण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो और कुछ परिस्थितियों में 1 गवाह की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ये गवाह कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका खाता उस बैंक में खुला हुआ हो जिसमें आप अपना खाता खुलवा रहे हैं।
निजी बैंकों में आपकी आय का प्रमाण भी मांगा जा सकता है, जिसे आप अपनी कंपनी से लेकर जमा करवा सकते हैं।
बचत बैंक खाता किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं होता। आप इसमें से कभी भी एक साधारण चेक के जरिए अपना धन अपनी जरूरत के मुताबिक निकाल सकते हैं। और अब तो आप एटीएम की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं।
जी हाँ, एटीएम बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली एक ऐसी सुविधा है जिसके जरिए आप कहीं भी कभी भी दिन हो या रात बैंकों द्वारा लगाई गई एटीएम मशीन की मदद से अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं।
दोस्तों, राष्ट्रीयकृत बैंकों में आपको अपना खाता खुलवाने के लिए इसकी शुरुआत कम से कम 500 रुपए से करनी होगी और निजी बैंकों में शुरुआत में जमा कराई जाने वाली ये राशि 5,000 से 10,000 रुपए तक हो सकती है।
अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां आपके आसपास बैंक की सुविधा नहीं है, तो आप अपना खाता किसी पोस्ट ऑफिस यानी के डाकघर में भी खुलवा सकते हैं और मात्र 20 रुपए से इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
बैंक और पोस्ट ऑफिस और भी कई तरह की सुविधाएं देते हैं, जिसके बारे में आप वहां के अधिकारियों से पूछना ना भूलिएगा।
और अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आपको पता है ना कि आपको क्या करना है?
आप अपने उस सवाल को SMS के जरिए हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9197176782।
और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट आपकी चिट्ठी की।
तो अंजलि, हमारे आज के विजेता कौन हैं?
नरेन, हमारे आज के विजेता हैं रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के दर्शन नेगी।
तो पढ़कर सुनाओ जरा, क्या लिखा है दर्शन नेगी जी ने?
ये लिखते हैं कि पलायन संबंधी अनुभव उतना नहीं है मेरा, लेकिन पलायन को लेकर एक छोटी सी आप बीती जरूर है जो मैं आपको लिखकर भेज रहा हूँ। सन 2007 में मैंने इंटर किया। उसके बाद मैंने और मेरे एक दोस्त ने प्लान बनाया कि नौकरी करने के लिए देहरादून जाएंगे। 24 जून सन 2008 को सुबह 7:30 बजे की गाड़ी से मैं अपने माँ पिताजी और भाई बहन से विदा लेकर अपने दोस्त कुलदीप के साथ गाड़ी में बैठा। जैसे तैसे हम दोनों देहरादून में सेलाकुई तक पहुँच गए। रात हो चुकी थी, इसलिए रात हमने एक होटल में गुजारी और सुबह उठते ही काम की तलाश में निकल पड़े। एक फैक्ट्री के बाहर से जब हम गुजरे तो वहाँ गेट पर पट्टा लगा था। उस पर लिखा था, हेल्परों की आवश्यकता है। मैंने वहाँ अपना बायोडेटा जमा करवा दिया। कुलदीप ने कहा कि अब कमरे की व्यवस्था करनी है। उस दिन 4 घंटे के करीब हम घूमते रहे, तब जाकर एक कमरा मिला जिसका किराया 500 रुपए था। मैंने मकान मालिक को 500 रुपए दिए और हम वहीं से सामान लेने बाजार आए। सामान लिया कम से कम 2,000 रुपए का। उसके बाद मैं काफी खुश था क्योंकि सारी समस्या हल हो चुकी थी, क्योंकि पैसा घर से ठीक ठाक मिला था। अगले दिन सुबह हम 7 बजे फैक्ट्री गए और काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पाइप बनते थे, दिन भर पाइप ढोते रहे। लंच तक काफी थकान हो गई। जैसे तैसे एक दिन निकल गया। दूसरे दिन स्टाफ के सारे लोग हमसे काम करवाते रहे, मैं करता रहा क्योंकि मैं सबसे छोटा और नया था। अगर किसी का कहना नहीं मानता तो वो बहुत गंदी गंदी गाली देता। मैंने वहाँ के सुपरवाइजर से बात की तो उसने भी मुझे बहुत डांटा और कहा कि अगर गाली देते हैं तो काम ठीक से कर। ऐसे में मैंने 5 दिन काटे। एक दिन एक उस्ताद ने मुझे लात मारी, गार्ड ने भी मुझे बहुत गाली दी, इसलिए मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। मुझे अपने आप से बहुत घृणा होने लगी। वहीं से मैंने फैसला किया कि यहाँ अब कभी नौकरी नहीं करूँगा। वहाँ से घर आया और वर्तमान में अपने घर में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के सामुदायिक रेडियो में विलेज रिपोर्टर और LIC के एजेंट का कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद
भाई। दर्शन नेगी जी, आपके भविष्य के लिए हमारी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप दिन दुनिया और रात चौगुनी तरक्की करें। लेकिन फिलहाल आपकी इस चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक बढ़िया सा ट्रैवल बैग। और दोस्तों, दर्शन नेगी जी की तरह आप भी ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। बस इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
पता तो याद है ना, कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
इसके अलावा आप हमें अपने प्रवास से जुड़े अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com। और अब बारी आती है आज के संदेशों की।
मेरा नाम विजय पाल सिंह बिष्ट, ग्राम शिला तला, पोस्ट ऑफिस नैनाणा, पौड़ी गढ़ वाला छू। और मैं अपर घर वालों तय संदेश देना चाहना छू। ग्राम शिला अपर माजी ब्रेज तई कना छो, ठीक छो, मैं तो एक बढ़िया छू, नौकरी करूँ आराम से। आप लोग अपर सेहत का ख्याल रखें, छोटा भाई बहनों का ख्याल रखें।
मैं दिल्ली से श्रुति बोल रही हूँ। नाना जी कैसे हैं और नानी जी कैसे हैं और मामा जी कैसे हैं? मुझे पता है 21 नवंबर की मामा की शादी है। मैं नई नई ड्रेस पहन कर आऊंगी, मेरे लिए खूब मिठाई रखना।
मेरा नाम श्याम सिंह बिष्ट, मैं पौड़ी गढ़ वाले नैनाण बिलो पास रहने वाला हूं। हमारा गांव नाम ग्राम सीलतला है। मैं अपन माँ जी का संदेश देना चाहता हूँ कि माँ जी मैं ठीक ठाक छू। दिल्ली में मैं एक दिल्ली में जॉब करो थो, लेकिन मैं माँ जी में दिवाली में घर नहीं आ सकू। मैं जल्दी घर हो लूँ तो अपर से आता ख्याल करी और आराम से रही, कटी नहीं उन्हें ज़्यादा नहीं घूमी।
दिल्ली से विभूति शर्मा बोल रही हूँ। अनुज भैया कैसे हैं, बिट्टू भैया कैसे हैं और फूफा जी कैसे हैं? मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। कल मेरा जन्मदिन है, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। मैंने आपके लिए केक तैयार रखा है, मैं अपने हाथों से आपको केक खिलाऊंगी।
वैसे नरेन, क्या तुम भी किसी खास को कोई संदेश भेजना चाहते हो?
अरे क्या बात करती हो अंजलि, भाई मेरी ऐसी किस्मत कहाँ।
फिर भी अगर तुम किसी को संदेश भेजना चाहो तो हमारा नंबर तो याद है ना, 9197176782। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी कोई भी दिलचस्प जानकारी है तो आप हमें चिट्ठियों के जरिए वो जानकारियाँ भी भेज सकते हैं।
साथ ही आप मिलजुल कर अपना एक क्लब तैयार कीजिए, या फिर अगर आप पहले से ही ऐसे किसी क्लब से जुड़े हैं तो उसके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की जानकारियाँ हमें भेजिए।
इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा और मंदाकिनी की आवाज़ भणज का भी धन्यवाद करना चाहेंगे।
और हाँ दोस्तों, हमें अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभव के साथ चिट्ठियाँ जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा।
हमारा ईमेल एड्रेस और पता आप एक बार फिर नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkior@gmail.com।
और चिट्ठियों के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का,
लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
नमस्कार।